हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। हाँ, सही कहा महारानी आपने, खतरा अभी पूरी तरह से तो टला नहीं है, क्योंकि वो असली राजकुमारी नहीं है, और जिस वजह से वो उसके पीछे पड़ा है, वो शक्तियां भी उसे उस लड़की में नहीं मिलेगी, इसलिए हमें अभी ये बात छुपा कर रखनी होगी। और वसुंधरा, क्या उसे वापस नहीं लाएंगे हम? हम उसे उसी तरह शैतान के पास करने के लिए छोड़ देंगे? नहीं, आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं? इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं आप महाराज? वसुंधरा ने बहुत ही विश्वास से उन सब की तरफ देखते हुए कहा। तो महाराज ने आगे बढ़ते हुए वसुंधरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, महाराज नहीं बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। नहीं, मैं इस सच को इतनी जल्दी स्वीकार नहीं कर सकती, मुझे समय चाहिए, और उससे पहले मुझे वसुंधरा वापस चाहिए। आप लोग राजकुमारी वसुंधरा को वापस लेकर आइए, कैसे भी। हाँ गुरुजी, किसी एक की जान बचाने के लिए दूसरे की जान खतरे में डालना, ये तो आपने हम लोगों को नहीं सिखाया है, तो फिर कैसे अपने राजा रानी को ये सलाह दी? क्या वसुंधरा की जान की कोई कीमत नहीं है? वीरेश ने भी अपने गुरुजी की तरफ देखकर उनसे सवाल करते हुए कहा, और वीरेश की इस बात का जवाब गुरुजी के पास नहीं है, क्योंकि उस वक्त राजा रानी ने उनसे मदद की गुहार लगाई थी, और उसे वक्त उन्हें इसके अलावा और कोई उपाय नहीं सूझा था। हमने उस वक्त वही किया जो जरूरी था, और अभी भी हम वही करेंगे जो जरूरी है, और उस लड़की को हम सब मिलकर बचा लेंगे। लेकिन ये लड़की शैतान के हाथ नहीं लगनी चाहिए, यही अभी हमारी पहली प्राथमिकता है, महात्मा गुरुजी ने वीरेश की बात का जवाब देते हुए कहा। लेकिन तभी चंद्रिका तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, नहीं, मैं आप में से किसी की भी बात नहीं मानूंगी, और मैं वसुंधरा को ढूंढने के लिए जाऊंगी। अगर आप लोग मुझे रोकेंगे फिर भी मैं नहीं रुकने वाली, क्योंकि अगर वसुंधरा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह स्वार्थी नहीं हूँ, चंद्रिका ने एक तरह से गुस्से में ऐलान करते हुए कहा। हाँ, मैं भी इसमें तुम्हारे साथ हूँ, मुझे भी वसुंधरा को वापस लेकर आना है। भले ही वो राजकुमारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे ऐसे मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते, और जब उस शैतान को पता चलेगा कि वो उसके काम की नहीं, वो उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। वीरेश ने तुरंत ही चंद्रिका की बात पर उसके साथ आकर खड़े होते हुए कहा, और वीरेश के साथ ही रक्षक दल के उसके सारे दोस्त भी उन दोनों के पीछे आकर खड़े हो गए। और तभी समर भी अपने माता पिता की तरफ देखते हुए बोला, माँ पिताजी, हमने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन वसुंधरा, मैं उसे अपनी बहन मानता हूँ, क्योंकि मुझे ये सच नहीं पता था, और मैं भी उसे इस तरह से मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं भी उसे ढूंढने के लिए जाऊँगा, बाकी मुझे और कुछ नहीं पता, मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ। चंद्रिका इतना बोलते हुए समर भी आकर चंद्रिका के साथ ही खड़ा हो गया, और वो सब राजा रानी और महात्मा के खिलाफ जाते हुए वसुंधरा को ढूंढ कर लाने की बात कर रहे थे, जिसमें कि वो लोग भी उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन तभी राजा ने कहा, नहीं चंद्रिका, तुम महल से बाहर कहीं भी नहीं जाओगी, ये हमारा फैसला है और आदेश भी। रात का समय, राजा ने चंद्रिका पर कड़ा पहरा लगवा दिया है, और उसे महल से बाहर कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा वो राजकुमारी वसुंधरा को ढूंढने का दिखावा भी कर रहे हैं, क्योंकि महल से बाहर किसी को भी इस बारे में नहीं पता है। सबको यही लग रहा है कि राजकुमारी ही महल से गायब हुई है, और राजा उसे ढूंढने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। उन सब लोगों को ये झूठ का खेल अभी भी खेलते रहना है, और महात्मा ने ही ये सलाह दी है, जिससे कि विक्रांत और किसी को भी शक ना हो। महात्मा अपने शिष्यों के साथ वहां से वापस जा चुके हैं, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है, और वो विक्रांत अपने मकसद में कामयाब हो गया, इसलिए अब उन लोगों के महल में रुकने का कोई भी मतलब नहीं था। चंद्रिका राजा और रानी को इस तरह से देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान है। उसे भी यकीन नहीं हो रहा कि राजा और रानी को वसुंधरा की बिल्कुल भी नहीं पड़ी, और बचपन से लेकर आज तक उन लोगों ने सिर्फ उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, और नकली राजकुमारी बनाकर रखा सिर्फ और सिर्फ उसे बचाने के लिए। ये सोचकर चंद्रिका को अपने आप से नफरत हो रही है, और वो अपराध बोध में है कि उसकी वजह से वसुंधरा के साथ इतना गलत हुआ, नहीं तो उसकी जगह पर आज वो होती, और वो सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा की वजह से ही बच पा रही है। ये सारी बातें चाहकर भी चंद्रिका के दिमाग से निकल नहीं पा रही है। उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की, लेकिन उसकी माँ उसकी बात सुनने समझने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए चंद्रिका ने चुपचाप गुप्त रास्ते से रात को सभी के सो जाने के बाद महल से बाहर जाने के बारे में सोचा, क्योंकि अगर वसुंधरा की जान को खतरा है और वो यहाँ पर महल में नहीं है तो चंद्रिका भी इस तरह चुपचाप नहीं बैठने वाली। खुद की सुरक्षा के लिए चंद्रिका इस वक्त इस कमरे में है जहाँ पर पहले वो रहती थी, क्योंकि वसुंधरा के कमरे में उसे वसुंधरा के बिना जाने का मन नहीं कर रहा और उसके कमरे में जितनी भी सेविका हैं वहाँ पर आसपास खड़ी थीं। चंद्रिका ने चिल्लाकर सभी को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया है। रात को सभी के सो जाने के बाद चंद्रिका ने एक बड़े से काले कपड़े से खुद को ढक लिया और कमरे की सारे दिए बुझा दिए और वहाँ पर एकदम अंधेरा हो गया। अपने हिसाब से वो एकदम चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए उसे कमरे से बाहर निकली और चारों तरफ देखते हुए वो वहाँ से आगे बढ़ रही थी। उसे इस बात का डर तो लग रहा था कि कहीं कोई पहरेदार या सिपाही उसे ना देख ले, लेकिन साथ ही उसे ये भी पता है कि रात के इस वक्त सभी की आँख लग जाती है और कोई भी उतना चौकन्ना होकर पहरा नहीं देता। इस तरह अंधेरे का फ़ायदा उठाकर छिपते हुए चंद्रिका वहां अपने कमरे से बाहर आ गई और बगीचे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके ऊपर हाथ रखा और चंद्रिका एकदम ही चौंक गई, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त कोई वहां पर उसके पीछे आ जाएगा। इसलिए रुककर उसने पीछे मुड़कर देखा और एक जानी पहचानी सी मानव आकृति से नज़र आए उसे। चेहरा साफ नज़र नहीं आया क्योंकि वहां पर काफ़ी अंधेरा था। इतनी रात को कहाँ जा रही हो चंद्रिका, इस तरह सबसे छिपकर? चंद्रिका के सामने खड़े उस शख्स ने कहा और वो आवाज़ सुनकर चंद्रिका अपनी जगह पर एकदम ही रुक गई। कौन है वो शख्स और क्या चंद्रिका महल से बाहर निकल पाएगी? और कहाँ जाने वाली है चंद्रिका? क्या उसे कुछ भी पता है वसुंधरा के बारे में? और क्या वो वसुंधरा को ढूंढ पाएगी? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए।